हरे कृष्णा। तो आज के 2 जुलाई के संध्या जागृत में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। कल हमारे अस्पताल में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, आप सब लोगों ने उसका अनुभव किया। तो उस कार्यक्रम की जो महति है, मतलब महात्म्य है या तो महत्व है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसमें काम किया। और इसके पीछे भी एक कारण ऐसा है कि ऐसी घटना या ऐसा प्रसंग, ऐसा उत्सव हमारे यहाँ पर हुआ, उसका कारण ये है कि हमारे अस्पताल में श्री जगन्नाथ जी महाराज विराजमान हैं और जगन्नाथ जी की बड़ी प्रेम से सेवा की जाती है। और जब जगन्नाथ जी की प्रेम से सेवा की जाती है और वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत कृपा बरसती है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर संतुष्टि और आनंद चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, यस, समसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो पूरा विश्व संतुष्ट हो जाता है, केवल हम ही नहीं, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम पेड़ के नींव के अंदर पानी देते हैं, पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, तो सारे पेड़ में बाहर आ जाती है ना, इसके फल फूल आ जाते हैं, पत्ते हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है, छांव हो जाती है। लेकिन क्या किसी को जड़ दिखाई पड़ती है क्या? बहुत कम, नहीं के बराबर, क्योंकि जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर होती है और ज़मीन के अंदर वो फैलती है और ज़मीन के अंदर फैलने की वजह से वो पेड़ को आधार प्राप्त होता है। पेड़ जो है एक जगह खड़ा है क्योंकि उसके नीचे जड़ जो है वो फैली हुई है। जब पेड़ ऐसे फैलता है तो जड़ भी ऐसे फैलती है, तब जाकर पेड़ खड़ा हो सकता है। ऐसे कहा गया है कि जब पेड़ की जड़ जब पहले फैलती है उसके बाद भी पेड़ फैलता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी हमारे घर के सामने मैंने कदम का पेड़ लगाया है, 6 हफ्ते तक उसका एक पत्ता भी नहीं बढ़ा। उसके 3 पत्ते थे जब मैं लाया था और 4 इंची पेड़ था वो, इतना सा, लेकिन 6 हफ्ते तक उसके अंदर कुछ भी अंतर नहीं हुआ। उसके बाद वो बढ़ने लगा और फिर रोज एक नया पत्ता इस स्पीड से बढ़ने लगा। उसके बाद रोज 6 इंच इस स्पीड से, उसके बाद रोज 1 फुट इतने स्पीड से बढ़ने लगा। क्योंकि इतने सारा समय जब कुछ भी नहीं हो रहा था, हमको लग रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अपना जड़ जो है वो ज़मीन में मजबूत करने का काम शुरू था उस समय। नई जगह पर अपना जो नींव है उसको मजबूत करने का काम हो रहा था। और आज भी अब जब हम देखते हैं बहुत पेड़ जो है कदम का हमारे घर के सामने वाला, वो 3 मंजिल तक ऊपर पहुंच गए हैं। उसमें एक पत्ता नहीं, उसमें शायद लाखों पत्ते होंगे और बाहर भी बीच में आए थे, बहुत सुगंध वाले कुछ फूल भी उसमें खिले हुए थे। इसका सारा कारण क्या है? क्योंकि ज़मीन के अंदर उतना ही विस्तार के आकार का जड़ जो है वो फैला हुआ है और वही उस पूरे सुंदर दिखने वाले घने छाँव वाले हजारों लाखों पत्तों वाले उस पेड़ की जो नींव है, जो मजबूती है, वो उस जड़ में है। उसी तरह से हमारा अस्पताल अगर आगे बढ़ रहा है, उसमें उन्नति हो रही है, समृद्धि आ रही है, नाम भी हो रहा है और बढ़ोतरी भी हो रही है, लोग भी सेटल हो रहे हैं, इसका सबका कारण जो है क्योंकि श्री जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी नीचे विराजमान है, वो हमारे जड़ की तरह है। वो कहीं तुरंत नज़र नहीं आते हैं किधर है वो, शाम को घूमते हैं तो नज़र आते हैं लेकिन आमतौर पर तुरंत नज़र नहीं आते, उनको जाके ढूंढना पड़ता है कहाँ पर है मंदिर, वो मिलते हैं। और जिस प्रकार से हमारे डीटी वर्शिप यानी कि हमारे जो मंदिर की पूजा करने वाले जो स्वयं सेवक हैं वो फ्री में काम करते हैं, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते, अपना घर का काम करके आते हैं माता जी लोग और वहाँ पर फूल माला बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर भगवान का हफ्ते में एक बार ड्रेस चेंज करते हैं, अलंकार चेंज करते हैं, तो कुछ माताएं माला बनाती हैं और कुछ माताएं ड्रेसिंग करती हैं और कुछ माताएं भोजन बनाती हैं, लेकिन तीनों लोगों का, तीन ग्रुप का क्या उद्देश्य है? इनको संतुष्ट करना। आप उनको ड्रेसिंग करो, हम उनको माला पहनाएंगे। आप उनको हफ्ते में एक बार श्रृंगार करो, हम उनको रोज़ माला पहनाएंगे। और कुछ माताएं कहेंगे जो आप सुंदर श्रृंगार करके उनको रखेंगे, हम उनको रोज़ भोजन खिलाएंगे। सहयोग है इसके अंदर, एक दूसरे को सहायता करने की भावना है, क्योंकि वो एक दूसरे को सहायता करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर पिता को संतुष्टि करनी है तो बेटों को एक दूसरे से सहयोग करना पड़ेगा। जब बेटे एक दूसरे से सहयोग करते हैं, पिता को अपने आप आनंद प्राप्त होता है। तो ये सहयोग जो है वो बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि कुछ ऐसे माताजी 35-40 मिलकर, जिनका नाम किसी को पता नहीं है, जिनकी पहचान किसको नहीं है, ऐसे पीछे रहकर, बैकग्राउंड में रहकर वो हमारे हॉस्पिटल के भगवान को सेवा करके संतुष्ट कर रहे हैं। और एक विशेष बात हमारे हॉस्पिटल में होती है, वो यह है कि हमारे हॉस्पिटल में जगन्नाथ जी को जो दोपहर का भोग लगता है, सुबह का भोग लगता है, शाम का भोग लगता है, तीन टाइम उनको भोजन खिलाते हैं हम लोग। वो अलग अलग माताएं अलग अलग समय पर आकर बनाते हैं उसे। वो भोजन उनको खिलाने के बाद जब निकालते हैं उसको, तो सबसे पहले हनुमान जी को खिलाते हैं। वही प्लेट जो है बदली करके, ऑफकोर्स उसी प्लेट में नहीं, अलग प्लेट में वही प्रसाद किसी को दिए बिना पहले हनुमान जी को पहुँचता है और हनुमान जी उसको पाते हैं। हनुमान जी जब पाते हैं तो वही प्रसाद अलग थाली में प्रभुपाद जी के पास में आता है, तो प्रभुपाद जी को उसको पाते हैं और उसके बाद में सबको उसको वितरित करते हैं, जिसको जिसको देना है। फिर कोई मरीज़ आईसीयू में बहुत सीरियस अवस्था में है, उसके रिलेटिव को देते हैं या किसी स्टाफ को देते हैं जिसका बर्थडे है, या और कभी फार्मेसी के स्टाफ को देते हैं या और किसी स्टाफ को देते हैं। इसके पीछे भी कहानी है, जो लीला बहुत लाखों साल पहले हुई है वो आज भी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में होती रहती है। यह आप लोगों को पता नहीं होगा, शायद पता होगा भी नहीं होगा। जगन्नाथपुरी ये जहाँ पर विराजमान है, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है बेड़ी हनुमान। कितने लोगों ने देखा है बेड़ी हनुमान? एक दो तीन। कितने लोगों ने सुना है उनके बारे में बेड़ी हनुमान? क्योंकि पिछले साल में हमने बताया है आपको कहानी यहाँ पर, लेकिन हमारी स्मृति इतनी कमज़ोर है ना, वो दो तीन दिन तक भी टिकती नहीं है, उसके बाद भी आपने हफ्ते पूछेंगे क्या बताया था तो भी याद नहीं आती। हर साल बिना चुके हम लोग बेड़ी हनुमान की कहानी आपको बताते हैं, लेकिन अभी आपको याद नहीं रहता है, लेकिन आप याद करना चाहिए। अगर उस लीला को सुनने के बाद में चिंतन करेंगे तो याद आएगा, अगर उस लीला को सुनने के बाद में बच्चों को बताएंगे घर जाके, हस्बैंड को बताएंगे तो याद रहेगा, और किसी को नहीं बताएंगे तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो ये हनुमान जी का लीला ऐसा है कि जगन्नाथ जी जब जगन्नाथपुरी में आए, मंदिर बना उनका, तो जगन्नाथ जी के पास ही में बहुत बड़ा समुद्र है, विशेष समुद्र है वो, उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर देश के लोग आते हैं। बहुत बड़ा विशाल उसका समुद्र किनारा है, पूर्व दिशा में वो समुद्र है, बंगाल का उपसागर कहते हैं उसको। लेकिन जगन्नाथपुरी का जितना विस्तार है, उस विस्तार के अंदर वो समुद्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर, बहुत उसकी लहरें जो हैं वो 8-8, 10-10 फीट की आती हैं। 8-10 फीट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से निकलती है और उधर तक आती है, हमारे हाइट के ऊपर 100-100 किलो व्यक्ति के आदमी को वो समुद्र जो है उठाकर फेंक देता है। मैं भी इसी तरह से फेंका गया हूँ, जानता हूँ, समझ में आता नहीं है। आप अंदर अंदर जाओगे अचानक आपको ऐसे गोल घुमाकर फेंका जाएगा, बहुत ज़बरदस्त ऐसे समुद्र है। तो जगन्नाथपुरी में वो समुद्र जो है वो आक्रमण करके जगन्नाथपुरी में बाढ़ लाता था पूरा रेगुलर, रोज के तरीके से। तो सब जगन्नाथपुरी वासी परेशान हो गए थे, तो क्या करना है, रोज का बाढ़, चलो एक साल में दो बार आए तो ठीक है, लेकिन हर रोज कुछ कुछ दिन के बाद में बाढ़, घर में पानी, सब हाहाकार बज रहा है, जानवर बह रहे हैं, सामान भी बह रहा है, सब सामान नष्ट हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया। तो भगवान ने जवाब दिया कि आप हनुमान जी को लेकर आओ, क्योंकि समुद्र देवता जो है वो हनुमान जी से डरते हैं, हनुमान जी का धाक है उनके ऊपर, तो उनको आगे खड़े करो, समुद्र देवता कभी हिम्मत नहीं करेंगे उसको आगे जाने। इसलिए हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी का कैसा था, हनुमान जी को परमानेंटली इस दुनिया में रहने का वरदान मिला गया है। जब प्रभु रामचंद्र गए यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके पुष्पक विमान में बैठकर जब गए, तब हनुमान जी को उन्होंने कहा कि आप मत चढ़ो, आप यही रुको। अभी आपको अच्छा लगेगा राम जी के साथ जाने के लिए कि नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना आपको, सब लोग जा रहे हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा लेकिन सब लोग जा रहे हैं इसलिए आपको लगेगा मैं भी जाना चाहिए। ऐसे एक भावना होती है मन की, अरे सब जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, अरे सब जा रहे हैं, तो आपको भी जाने का दिल करता है। फिर भी एक जो सेवक होता है ना, सेवक, उसका एक ही भाव होता है कि मेरे मालिक को क्या अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। सब जा रहे तो क्या हुआ, अगर मेरे मालिक की और कोई इच्छा है तो मैं पूरी करूँगा, अगर मालिक की इच्छा है तुम भी चलो तो मैं चलूँगा, मालिक कहेंगे रुको तो रुक जाऊँगा, भले पूरी दुनिया जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं मुझे, मेरे वो करने से अगर मेरे स्वामी को संतुष्टि आनंद प्राप्त होता है तो मैं वही करूँगा। तो भगवान ने कहा तुम रुक जाओ, और तुम्हारा सेवा ये रहेगा कि जब तक इस विश्व में मेरे बारे में कथा होती रहेगी रामलीला, तब तक आपको यहाँ रहना है और वहाँ वहाँ जाना है जहाँ जहाँ मेरी कथा का गुणगान होता रहेगा। तो आज भी प्रभु रामचंद्र की कहानी जहाँ भी कही जाती है उस सभा के अंदर हनुमान जी आके बैठ जाते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन उनके संग का लाभ होता है उन लोगों को जिनको जो कथा में राम के बैठे हुए हैं। तो रामचंद्र प्रभु जाने के पश्चात भी हनुमान जी रह गए और अभी भी वो दृश्य अवस्था में कभी दिखाई पड़ते हैं कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रहते ज़रूर हैं। जब तक प्रभु राम का नाम इस विश्व में लोग ले रहे हैं, उनकी कथा गुणगान हो रहा है, तब तक वो रहेंगे। तो वो थे उस समय, उनको बुलाया गया, वो आए प्रभु की सेवा में आए, प्रभु ने कहा आ जाओ तो आ गए। प्रभु चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे जगन्नाथ के रूप में हो, राम लक्ष्मण जगन्नाथ बलदेव, तो आ गए वो। क्या सेवा करना है, कुछ नहीं, खड़ा होना है बस, ऐसे आपको देख के सब काम हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना, अरे प्रभु जी आप आओ, मतलब आओ लेकिन क्या सेवा, क्या है बताओ ना, क्या काम क्या है, कुछ नहीं प्रभु जी आप आ जाओ, खाली आप रहो बस, आप बैठो आके। ऐसे ही होता है, गुरु महाराज जो है उनको कोई सेवा नहीं है समझो किसी फंक्शन के अंदर, लेकिन उनका होना ही उनकी सेवा है। वो आगे 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 उनका उपस्थिति में इतना पवित्र उत्पन्न होता है कि उसके उपस्थिति में सबको शांति मिल जाती है और कार्यक्रम भी सफल हो जाता है। वैसे हनुमान जी को सेवा क्या है, कुछ नहीं, यहाँ खड़ा रहना है बस, आपके केवल खड़े होने से ही समुद्र जी हिम्मत नहीं होगी आगे आने की, और सब लोग हमें आना आराम से जिएंगे और जगन्नाथ जी का दाल चावल भी आपको मिलता रहेगा। अरे ठीक है कोई बात नहीं, खड़े हो गए सब कुछ शांति हो गई, कोई बाढ़ वाड़ कुछ नहीं, सब आनंद हो गया सब जगह पर। अभी बहुत दिन हो गए, सब जगह शांति में हैं, जगन्नाथ खुश हैं, सब भक्त लोग खुश हैं। हनुमान जी को सीता देवी के हाथ के भोजन की याद आ रही है, अरे सीता मैया कितनी बढ़िया लड्डू खिलाती थी, कितने पकवान खिलाती थी, इतना स्वाद था उसके अंदर, पुत्र के भावना से मैया के पास जाके वो भोजन करते थे। तो बड़े दिनों की उनकी याद आई, दाल चावल खा के एकदम, हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, पक गए। बिल्कुल परेशान हो गए, याद आने लगी, बहुत देर से भी बहुत दिन हो गए, समुद्र भी आगे नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक दिन रात को उन्होंने एक छलांग लगाई जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे से सीधे अयोध्या में, और माता से मिले, भैया आ रही पुत्र तुम कहाँ से आए, बहुत दिनों बाद आए, अरे कब से मैं तुम्हारी याद कर रही थी, लड्डू खाओगे भोजन करोगे, हाँ भैया बहुत भूख लग रही है और याद भी आ रही है आपके भोजन के, बहुत दिन से पाया नहीं है, कृपा करके जल्दी बनाइए। तो मैया ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, बहुत पसंद पसंद का खाना बनाया, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, बड़े प्रेम से हनुमान जी को खिलाए, हनुमान जी बड़े तृप्त हो गए और एक छलांग लगाई वहाँ से जगन्नाथपुरी। हाँ वो उड़ते नहीं हैं, वो केवल छलांग लगाते, स्ट्रेट जंप, आगे खड़े हो गए, देखा कुछ नहीं हुआ रात को, नो प्रॉब्लम, उसको लगा आज गया तो अभी कल भी जा सकता हूँ, उसमें क्या है, आज गया कुछ नहीं हुआ, कल भी जाऊँगा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी गए, भैया के हाथ का भोजन खाया, जंप लगाई, आ गए। तीसरे दिन भी गए, हर रोज आने लगे। तो बहुत दिन के बाद में समुद्र को ध्यान में आया कि रात के समय ये जाता है। तो एक दिन जब गए, बहुत दिन जाने के पश्चात एक दिन जब गए तो जाते ही तुरंत समुद्र ने आक्रमण किया और पूरी बाढ़ छा गई, पूरी जगन्नाथपुरी में पूरी बाढ़ हो गई। सब जगह पानी पानी पानी, अंधेरा, एक तो अंधेरा, ऊपर से पानी, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना सारा कन्फ्यूजन हो गया उधर, सब परेशान हो गए। पूछ रहे हनुमान कहाँ है, हनुमान कहाँ है, हनुमान तो नहीं उधर। सब लोग बुला लेंगे, हनुमान हनुमान कहाँ पर हो, कोई पुकार का जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे कष्ट हो गया, इतना सारा सामान बह गया, जानवर बह गए, बाकी सब हानि हो गई, इतना दुख हुआ, कष्ट हुआ, परेशानी हुई। ये कष्ट को भोगते भोगते तो रात बीत गई और दिन आया। जैसे ही दिन आया, छलांग लगाई गई अयोध्या से, हनुमान जी का खड़े हो गए अपनी जगह पर। जैसे खड़े हो गए, तुरंत समुद्र भाग गया पीछे, सब ठीक ठाक हो गया, मतलब पानी खत्म हो गया। सब भाग के गुस्से से आए हनुमान जी के पास, कहाँ गए थे आप, क्यों गए थे, आपको पता नहीं आपके जाने के बाद क्या हुआ। मैंने कहा मैं कई बार जा चुका हूँ तो आपको आज मालूम पड़ रहा है, आप बड़ी गहरी नींद सोते हो रात को, तब मैं जाके आता हूँ, आज क्या हो गया, आज गए तो समुद्र आ गया पूरा। अच्छा, तो तुमने कहा, उन्होंने कहा कि क्यों गए तुम, क्यों जाते हो, आपको कहा है ना यहाँ पर खड़ा रहने के। उन्होंने क्या करते आप लोग तो खाली दाल चावल खिलाते हो, और हमें तो मैया के हाथ के लड्डू पंच पकवान खाने की आदत है। हमें याद आई, हम गए, मैया ने खूब खिलाया तो हमको रोज़ जाने का दिल हुआ, तो रोज़ गए तो हम जाएंगे अगर आप नहीं खिलाएंगे तो। तो फिर उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, तब जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि आज के बाद मैं जो खाऊंगा वो सारा पहले जगन्नाथ जी का मेरा जो प्रसाद है वो हनुमान जी को अर्पण किया जाए, क्योंकि मेरे 56 भोग में तो पंच पकवान और सब कुछ रहता है ना, उसके अंदर मिठाई भी रहती है और पकौड़ा भी रहता है और सब कुछ व्यंजन रहता है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी ये जाएंगे, इसलिए लोगों ने बड़े प्रेम से उनको पैर को सांकड़ी बांध दिया और तब से उनका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। उनको बेड़ी में बांध दिया उन्होंने पैर से, उनका धोती ऊपर करते ना तो वो बड़ा श्रृंखला जो है, बड़ी सांकड़ी जो है वो दिखाई पड़ती है, और समुद्र किनारे खड़े एकदम से बहुत बड़े। उसके बाद में कभी वापस समुद्र ने हिम्मत नहीं किया जगन्नाथपुरी प्रवेश करने के। तो वो जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हनुमान जी को खिलाने का जो रिवाज है वो आज भी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में हर रोज़ हम लोग पालन करते हैं, इसलिए और भी हनुमान जी की कृपा भी यहाँ पर उपलब्ध है। सब जगह हनुमान जी जो है वो वीरासन में खड़े रहते हैं, पता ना कैसा होता है वीरासन, एक पैर फोल्ड किया हुआ, एक पैर नीचे, हाथ में गदा, ऐसे रेडी टू जंप, हाँ कभी भी कोई शत्रु आएगा तो जंप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कैसे खड़े हैं, अभय मुद्रा में खड़े हैं, गदा खंधे पर नहीं है, गदा जमीन पर है, और आशीर्वाद, अभय मुद्रा कहते हैं, आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। जो भी कोई संकट में है, जो कोई पीड़ा में है, परेशानी में है, चिंता में है, इसका मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का आईसीयू में है, किसी का बच्चा एनआईसीयू में है, वो सबको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ खड़े हुए, और वो भी संतुष्ट हैं क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल केयर के स्टाफ जो हैं, जो ये माताएं बड़े प्रेम से भोग बनाती है और जगन्नाथ जी भोजन करते हैं उसी को लेकर फिर ऊपर जाते हैं, वो हनुमान जी को बड़े प्रेम से खिलाते हैं, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद में संत को प्रसाद आता है, प्रभुपाद जी को, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब संत भगवान का भक्त और स्वयं भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो आप सबके जीवन में संतुष्टि आ जाती है, सबका पगार बढ़ता है, सबको इस वातावरण में काम करने को अच्छा लगता है, नो पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स पैदा नहीं होता है, कोई भेदभाव पैदा नहीं होता है कि भाई ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये गरीब है, काला है, गोरा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है, सब लोग प्रेम से व्यवहार करते हैं, ना ऊपर पॉलिटिक्स है ना नीचे पॉलिटिक्स है ना, ये सब आसानी से नहीं होता है। सब जगह दुनिया में पॉलिटिक्स है, सब जो सब जगह पर दुनिया में किसी किसी को नुकसान करके लोग आगे जाना चाहते हैं, हर जगह पर ऐसा, पड़ोसी भी सोचता है कि मेरे पड़ोसी से आगे जाना चाहता हूँ, तुम्हारी मोटरसाइकिल है तो वो भी अपनी मोटरसाइकिल लेके आता है, उससे भी थोड़े बढ़िया वाला लेके आता है, हर लोग, हर व्यक्ति इस दुनिया में दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और खुद आगे बढ़ना चाहता है किसी भी कीमत पर, चाहे तुम्हारे छाती पर पांव रखकर उसको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा तो वो रख के चढ़ेगा, वो सोचेगा नहीं आपके बारे में, हु केयर्स, मुझे आगे जाना है बस। ये पूरी दुनिया इस वातावरण में बैठी हुई है, लेकिन भगवान की असीम कृपा से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में ये सब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में पैसा नंबर वन नहीं है, बिजनेस नंबर वन नहीं है, यहाँ पर मरीजों की भगवान की भावना में सेवा करने की जो उद्देश्य है वो सबसे पहला है। नहीं तो करोड़ों का बिजनेस हम कर सकते थे, हमारे पास सुविधा है, हमारा बिल्डिंग इतना बढ़िया बना हुआ है, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आप लोगों से 10-8 घंटे का पगार देकर 12-12 घंटे काम करवा सकते हैं, ऐसे बाहर लोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर आपका हृदय संतुष्ट होगा तो मरीज को आप संतुष्ट कर सकते हैं। अगर आपका हृदय को हमने अच्छी तरह से पीस पीस कर कष्ट दिया हुआ है तो वही कष्ट आप मरीज को देंगे, क्योंकि आपके मन पास कष्ट आया हुआ है तो आप दूसरे को कष्ट देंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके हृदय में खुशी है तो ही आपको मिलके दूसरे को वो खुशी मिल सकती है, जो आपके पास है वही लोगों को मिलेगा। अगर आपके मन में कपट है तो वो कपट का अनुभव लोगों को होगा, अगर आपके मन में झूठ मूठ की भावना है, दिखावा है, ढोंग है तो लोगों को ढोंग का अनुभव होगा, अगर आपके मन में संतोष है, आनंद है तो उसे आनंद का लोग अनुभव करेंगे, है ना। आपके चेहरे पर खुशी कैसे आएगी जब वो नहीं आ सकती है तो मरीज को कैसे मिलेगी? अगर आपको हंसने में परेशानी है, जो हंसने में इतना कष्ट हो रहा है तो नहीं हंस सकते, तो मैं आप नहीं हंसेंगे तो मरीज भी नहीं हंस सकता है, क्योंकि तो ऑलरेडी वो दर्द में है, वो कैसे हंसेगा? इसलिए मरीज को जो सेवा करने वाला है वो अगर खुशी में रहेगा, आनंद में रहेगा, तो वो अपनी खुशी आनंद जो है उसको बांट सकता है। हमें कल के दिन में कितना आनंद हुआ, हाँ, हर एक व्यक्ति को आनंद का अनुभव हुआ। कोई अब्दुल कलाम जी किसी का रिश्तेदार नहीं है, ना कोई मामा चाचा आपका कोई है नहीं वो, लेकिन वो उसके आने से, उनके आने से सबको आनंद हुआ। हमारे कई संत हैं इसको आनंद, उन्होंने हमको मैसेज भेजा कल कि आपके अस्पताल के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है कि ऐसी व्यक्ति जो पॉलिटिशियन नहीं है, जो करप्ट नहीं है, जिसकी जो फेमस है, जो जितनी उनकी प्रशंसा है, वो एक अच्छे इंसान की तरह है। ऐसा नहीं कि बहुत लुच्चा है, पॉलिटिकल है, लोगों को लूटता है, बहुत खंडनी घोड़ा एकत्र करता है लोगों से, ऐसा उसका पहचान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो निरपेक्ष है, जो पॉलिटिशियन नहीं है और राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो आपके हॉस्पिटल में आने के लिए तैयार हो गए हैं और आने वाले हैं, ये आपका बहुत बड़ा सम्मान है। इससे आपका नाम और चार दिशा में फैल जाएगा और लोगों को लाभ होगा इसकी वजह से। जब कोई सेवा का डिपार्टमेंट हम खोल रहे हैं तो किसी बड़े व्यक्ति से उद्घाटन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को जानकारी हो जाएगी, अरे ये फलाना हॉस्पिटल में वो व्यक्ति वहाँ पर गए थे, उन्होंने डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया है और उस डिपार्टमेंट के द्वारा जो टेस्ट होंगे एंजियोग्राफी वो केवल 6,000 में होगी और जो एंजियोप्लास्टी होगी वो केवल 60,000 में होगी, ऐसा कहीं पर नहीं होगा। ये जो जानकारी है बहुत दूर दूर तक लोगों को मालूम पड़ेगी और उसके बाद में दूर दूर से लोग इस सेवा को सस्ते कीमत में करवाने के लिए यहाँ तक आएंगे। तो उद्देश्य ये नहीं कि हमारा पेपर में नाम छाप गया है, उद्देश्य यह है कि और अधिक लोगों को जानकारी होकर और अधिक लोग यहाँ पर आकर वो जो वातावरण है यहाँ का भक्तिमय, उस वातावरण में अपने हृदय का इलाज करें और साथ साथ में ये भी सीखें कि हृदय रोग को टालना कैसे है, हाउ टू अवॉइड हार्ट डिसीज, ये भी समझें। अगर केवल पैसा ही बनाना है तो हृदय रोग कैसा टालना है ये हम बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर हम सिखाएंगे तो आप टालेंगे, फिर हमारे पास कैसे आएंगे? तो अगर वो उद्देश्य होता पैसा ही बनाने का तो हम लोग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं खोलते यहाँ पर, जिससे हृदय रोग जो होने वाले हैं वो टल जाएंगे, एंजियोप्लास्टी नहीं होगी उसकी, एंजियोग्राफी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि हम ये विश्वास रखते हैं कि पैसा जो है वो भगवान देते हैं, हमको आपको जेब से छीनने की जरूरत नहीं है, हमको आपको एजुकेशन ना देकर हृदय रोग आपको देकर फिर हृदय रोग का इलाज करने के लिए यहाँ पर लाकर आपसे पैसा निकालने की जरूरत नहीं है गलत रास्ते से। पैसा जो है भगवान की इच्छा से आता है, जहाँ पर नारायण की बड़े प्रेम से सेवा होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से आकर रहती है, और जहाँ पर नारायण की सेवा नहीं होती है केवल लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे लोग भागते हैं, उनसे लक्ष्मी दूर दूर भागती है। उनका एक नाम है चंचला, आपने सुना है? चंचला का मतलब बहुत चंचल रहती है, जब तक उनके पति देव नहीं रहते हैं तब तक वो इस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाती रहती है, एक जगह स्थिर रहती नहीं, कभी आज है तो कल नहीं है। हाँ, बड़े धनी राम के गरीब राम बन जाते हैं कुछ दिन के बाद, लेकिन जब नारायण की सेवा हो जाती है जिस जगह पर, जैसे मैंने कहा जब पेड़ के नींव में जल प्राप्त करते हैं, हम देते हैं जल, तब पेड़ को बताना नहीं पड़ता है कि अभी आप फूलो और फलो। जैसे आपने जड़ में जल दिया उसके, तुरंत पेड़ के अंदर पत्ते पौधे और शाखा और फूल और फल अपने आप आने लगते हैं, बड़ी छाया बन जाती है उसकी, आप खाली उसके नींव में जल देते रहो। वैसे केवल लक्ष्मी के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के पीछे भागने से ऐसा वर्णन प्राप्त किया है कि लक्ष्मी आपसे और दूर भागेगी, इसलिए लक्ष्मी के नाथ की सेवा करो। तो लक्ष्मी के नाथ की सेवा करेंगे, लक्ष्मी उसके चरणों में आके बैठ जाएगी जहाँ पर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, वहीं पर धन की प्राप्ति होती है। तो धनी सबको बनना है, लेकिन सबको पता नहीं धनी कैसे बनना है। सब लोग जैसे रावण कैसे होता है, जो राम को छोड़कर सीता का भोग देना चाहता है, उसको राम से कोई लेना नहीं है, उसको सीता चाहिए बस, तो ज़बरदस्ती वो उसके इच्छा के खिलाफ उसको ज़बरदस्ती उठाकर रुलाकर अपने घर लेके उसका भोग करना चाहता है, लेकिन कर पाया क्या भोग उसका? वो खाली उसको एक ही खुशी थी कि मेरे पास सीता है, मेरे एरिया में उसको रखा है, लेकिन वो छू भी नहीं सका उसको, उसको शाप था कि अगर तुम छूओगे तो वहीं मर जाओगे, इसलिए उसको वो पटाने की कोशिश कर रहा था, कैसे ही मनाने की कोशिश करती है, मन जाएगी तो फिर मैं उसका आनंद ले सकता हूँ, लेकिन आखिर तक क्योंकि उसका भाव छल और कपट का था, आखिर तक उसको एक इंच का भी भोग नहीं मिल सका, और ये केवल भोग नहीं मिला, उसका सर्वनाश हो गया, अपने परिवार के साथ राक्षस कुल के साथ उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति राम के बिना सीता का भोग करना चाहता है, नारायण की सेवा के बिना लक्ष्मी का भोग करना चाहता है, उसको भोग तो मिलेगा ही नहीं लेकिन सर्वनाश भी हो जाएगा उसका। तो ये अस्पताल में नारायण की सेवा होती है, जगन्नाथ भगवान की सेवा होती है, इसलिए लक्ष्मी जी इन तीनों विग्रह में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहना चाहती है, इसलिए हर साल तनख्वाह बढ़ रही ना। बाहर के दुनिया में क्या बोलते हैं, मंदी आ गई है वर्ल्ड में सब जगह पर, अभी मंदी से लोग उठ नहीं रहे, उठ ही नहीं पा रहे, थोड़ा ऊपर आते फिर गिर जाते, थोड़ा ऊपर आते फिर गिर जाते, सब जगह पर रिसेशन है, सब एयरलाइंस की नौकरियाँ बंद हो चुकी हैं, सब एक एक को काम पे निकाल रहे हैं, जॉब ही नहीं, बोलते सब जगह बेकारी बढ़ रही है। पैसा भी मौका आया था, समय आया था कि बोलते कि अभी काम करना है तो करो, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, करना है तो करो तो चले जाओ, किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दिया, मतलब आपके लिए अच्छा पैकेज मिलेगा आप जाओ। उस समय भक्ति वरदान के अंदर इंक्रीमेंट लोगों को मिल रहे थे, ये कोई हमारा गर्व की बात नहीं है, हमको भी आश्चर्य इस बात का और विश्वास इस बात का है, क्योंकि यहाँ पर नारायण की सेवा होती है, उन्हीं की सेवा के लिए ये बनाया गया है, उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए सब लोग संतुष्ट हैं। तो हनुमान जी को भी प्रसाद यहाँ मिलता है, भगवान का, जगन्नाथ जी का, तो वो जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान, यहाँ पर कण कण में समाये हुए हैं, इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बहुत उनका श्रृंगार, हाँ ये अपने आप होता है क्या सब कुछ, ऑटोमेटिक एक मंत्र बोलेगा तो हो जाता है? नहीं, बहुत लोगों को समय निकाल कर आना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मंत्र बोलने पड़ते हैं, बहुत मालाएं रेडी होती हैं, फिर ड्रेस निकालते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, एक एक ड्रेस को तीन तीन चार चार महीना लगते हैं बनाने के लिए, वो सब लोग अपने घर पे अपना खाना वाना हो गया बना के, दोपहर का नींद थोड़ा सा कैंसिल करके उसको बनाते रहते हैं, जगन्नाथपुरी का उत्सव आने वाला है, ड्रेस बन रहा है घर पे, नया ड्रेस का भगवान को भेंट दिया जाएगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता ना आपको, भगवान के लिए अगर ड्रेस बनाए तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसका, पगार नहीं बढ़ती आपको, लेकिन फिर भी लोग भक्ति भाव से भगवान को हर साल तीन तीन ड्रेस बनाते हैं हमारे हॉस्पिटल में, एक जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के उत्सव में, एक गोकुलाष्टमी के उत्सव में और एक गौर पूर्णिमा के उत्सव में, तीन ड्रेस बनते हैं, साथ में मटका भी बन, फेट कपटका भी बनता है उनका, श्रृंगार भी नए नए आते हैं, वृंदावन जाते हैं यात्रा करने, तब जाकर दो दिन रुकते हैं, पूरा शॉपिंग करते हैं, का सेट बना के उसको संभाल के रखते हैं, उसको साफ करते हैं, बहुत काम है उसमें। हाँ, ये सब किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और वो लोग बिना किसी हेतु के काम कर रहे हैं, कोई लाभ के हेतु नहीं उनके मन में। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर फल फूल रहे हैं, तो उन लोगों का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर पर्दे के पीछे है वो। जब ड्रामा होता है ना तो हीरो सामने आता है, लेकिन स्टेज कौन सेटिंग करता है हीरो के लिए, बैठने के लिए, कुछ करने के, डायलॉग मारने के लिए सेटिंग कौन करता है? बहुत लोग पीछे रहते हो, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर्दा खुलता है तो सब रेडी रहता है, फिर पर्दा बंद होता है, फिर अगला सीन के अंदर अगला सेटिंग होता है, पूरा रेडी रहता है, फिर पर्दा खुलता है। बहुत लोग भागते रहते हैं अंधेरे में टॉर्च लेकर, तब जाकर ड्रामा लोग देख सकते हैं। और वाह वाह किसको मिलती है? हीरो को, हीरोइन को, सबको वाह वाह मिलती है। वाह वाह क्या डायलॉग बोला आपने, वाह, जिस आँखों में आंसू आ गए एकदम। लेकिन वो डायलॉग बोलने के लिए अच्छा वातावरण निर्माण किसने किया? पीछे के लोगों ने किया, सेटिंग पूरा। उसी तरह से कल के कार्यक्रम में कुछ कुछ लोग आगे आगे थे, लेकिन बहुत लोगों ने उसमें अपना समय और दिमाग और मेहनत कर दिया था। इसलिए गौरव जो सामने थे उनका नहीं है, सबका गौरव है, और गौरव उससे भी आगे उनका सहयोग का गौरव है, जो उन्होंने बिना झगड़ा किए तू तू मैं न करते हुए जो जरूरी है वो करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया। तो यही हमारे हॉस्पिटल का यश का रहस्य है, और हमको इसी को आगे बढ़ाना है। मरीज यहाँ पर आता है और अगर नर्स और फार्मासिस्ट अगर झगड़ा करेंगे तो झगड़े में कौन जीतेगा? कोई एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हार जाएगी, लेकिन मरीज कहीं हारी हो जाएगी हमेशा, क्योंकि मरीज का नुकसान ही होना है। जब आप झगड़ा करोगे तो उसको तकलीफ भी होगी। अब पैथोलॉजी का और नर्स का झगड़ा है तो रिपोर्ट टाइम पर नहीं आएगी, है ना? डॉक्टर का और नर्स का झगड़ा है, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, नर्स ने दिया ही नहीं। हाउसकीपिंग का और नर्स का झगड़ा है, वो ड्यूटी पर आता ही नहीं टाइम पे, उधर भी प्रॉब्लम मरीज को। सबका जहाँ पर सहयोग नहीं है उसका परिणाम कहाँ होता है? मरीज पर होता है। और मरीज यहाँ पर पिकनिक मनाने को नहीं आता है, मरीज यहाँ पर तो इलाज करने के लिए तकलीफ में, कष्ट में आपका मुंह देखते हुए आता है कि भैया लोग मुझे ठीक करेंगे, और क्या देखते हैं कि झगड़ा कर रहे हैं सब लोग। और किसी अस्पताल में देखते हैं कि अरे मैं तो यहाँ पर इलाज करने आया था, लेकिन डॉक्टर तो लव अफेयर कर रहा है नर्स के साथ में, उसको टाइम नहीं है, मैं बेल मार रहा हूँ तो वो लोग बिजी है बात करने में, बहुत देर से उठ रहे हो क्योंकि बहुत मीठी मीठी बातें हो रही है। हाँ, एक तरह का असहयोग ये है और ये बहुत ज़्यादा सहयोग है। ये दोनों गलत बात है, क्योंकि हम लोग आए यहाँ पर किसके लिए है? मरीज की सेवा करने, तो मरीज की सेवा करने के लिए आए हैं और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं, या और कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, नुकसान केवल मरीज का होते रहता है। और जहाँ पर सहयोग नहीं होता है वहाँ पर बड़े बड़े संकट आते रहते हैं, ये भी हमने देखा हुआ है इतिहास में। अगर आप लोगों के अंदर सहयोग नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, मरीज के इलाज के अंदर होगी, झगड़ा होगा, 50 लोग जमा हो जाएंगे, गाली देंगे, गाली गलत पत्थर मारेंगे, कुछ ना कुछ डॉक्टर को गाली देंगे, धक्का मुक्की करेंगे। आप पढ़ते हैं ना पेपर के अंदर, वो अस्पताल में मरीज लोग घुस गए और डॉक्टर को पीटा, वो उधर ये किया, कांच तोड़ दिया, उधर वो किया, डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दे दी। जब पूरा वातावरण सहयोगमय रहेगा, शांतिमय रहेगा और सहयोगमय रहेगा, और सब लोग मरीज को संतुष्ट करने के लिए सहयोग करते रहेंगे, तो फिर झगड़े कभी नहीं होंगे। मरीज अगर मर भी जाएगा ना तो बोलेगा मर गया, दुख है हमको इस बात का, लेकिन यहाँ मरा अच्छा हो गया। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी गुजर गए, बहुत दुख है हमको इस बात का, लेकिन आपके हॉस्पिटल में गुजरे बहुत अच्छी बात है, इतने इत्मीनान से उनका इलाज और कहीं होना मुमकिन नहीं था, और कहीं भी होते तो पता नहीं और क्या होता। ये क्यों होता है? ऐसे लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो आप लोगों के सहयोग को देखते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये लोग सिंसियर लोग हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, सेवा का नाटक नहीं कर रहे हैं, प्रामाणिकता से सेवा कर रहे हैं। और वो प्रामाणिकता से सेवा करने के लिए भगवान की सेवा करना भी जरूरी है, तो भगवान की सेवा करेंगे तो आपका जलता हुआ मन जो है वो शांत हो जाएगा, वो शांत मन से आप सेवा करेंगे तो जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी शांत हो जाएगा। दर्द तो उसको होगा ही, तकलीफ में तो आया, वो कष्ट तो होगा ही उसको, लेकिन उस कष्ट में भी आपका सहयोगपूर्ण सेवा उसको आनंद देगा, उसको क्या, मैं अच्छी जगह पर हूँ, उसकी जगह उसके बजाय यहाँ पर हूँ बहुत अच्छा हूँ, ऐसा उसको लगेगा मन में, और वो तुलना भी करेगा, पिछली बार मैं उधर था इतना कष्ट था, इधर आया अच्छा लग रहा है, वो पैसा भी खर्च कर रहा हूँ फिर भी संतुष्टि है। ये भावना निर्माण करना आप लोगों के हाथ में है, और वो भावना निर्माण करने का जो वातावरण यहाँ का है वो कुछ लोग कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, उनकी कृपा से जो ऐतिहासिक लीलामय घटनाएं यहाँ पर हो रही है उनकी कृपा से भगवान संतुष्ट है, यहाँ पर हैं भगवान संतुष्ट है, इसलिए आप पर वर्षाव कर रहे हैं आनंद का, वरदानों का और खुशियों का। तो आज के मेरे सारे कथा का क्या सार है बताइए। यस यस, सहयोग, सहयोग पूर्णता से भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को संतुष्ट करना सम सिद्धिर हरितोषणम, वो सहयोग से ही हो सकता है। जहाँ सहयोग है वहाँ पर आनंद है और समृद्धि होती है, यहाँ पर सहयोग नहीं होता है वहाँ पर जो आपको प्राप्त है वो भी नष्ट हो जाता है और दूसरी प्राप्ति नहीं होती कुछ और। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके आनंद के लिए अभी कल से स्वच्छता सप्ताह शुरू हो रहा है, और आप लोगों को अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वस्त्र को और अपने वातावरण को सबको शुद्ध करना है। और अपने वातावरण का शुद्ध करना मतलब जहाँ पर आप बैठते हो उसके ड्रॉवर में और कबड़ के अंदर क्या क्या रखा है आपने, उसको हाथ नहीं लगाया, धूल फैल रही है, वो सब आपको साफ़ करना है। और वो डिपार्टमेंट के अनुसार जो साफ़ सफाई आप करेंगे 6 दिन के अंदर, उसके अनुसार डिपार्टमेंट को प्राइज़ भी मिलेगा। तो कल से आप अपना डिपार्टमेंट अंदर से साफ करना शुरू कर देना। फिर 9 तारीख को पूरा अस्पताल साफ करना है, लेकिन वो केवल 9 तारीख का फंक्शन नहीं है, 6 दिन जो मिलेंगे आपको उसके अंदर आपका ड्रॉवर खोलना है, आपको क्या क्या अंदर चाहिए नहीं चाहिए उसको देखा भी नहीं, जिसके बिना आपका काम चलते आ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको हाथ नहीं लगाया, तो वो सबको आपको निकालना है और सॉर्ट करना है। और जब आप उसका सॉर्टिंग करेंगे ना तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा, मैं आपको उसका वादा करता हूँ। जब भी आप कुछ कचरा निकाल के फेंकते हो ना, जहाँ बैठते हो रहते हो, तुरंत मन एकदम खुला हो जाता है, एकदम फ्री हो जाता है माइंड, और वो फ्री माइंड में जब आप सेवा करोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। जब बहुत गंदा शरीर हो गया आपका तो कुछ नया काम करने को बोलेंगे आपको तो वो का मूड नहीं बनेगा, आप बोलेंगे एक आधा घंटा दो जरा मैं स्नान करके आता हूँ, स्नान करके आने के बाद एकदम मूड बनेगा आपका कि कुछ और काम कर सकते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो गए तो दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन वही सुबह से काम कर रहे हैं और रेस्ट भी बदली नहीं किया और कुछ फ्रेश होने को टाइम नहीं मिला तो आप और एक काम नहीं कर सकते। हाँ, तो शुद्धता का ये एक पावर है, जब शुद्धता होती है तो और शक्ति पैदा होती है, इसलिए आप डिपार्टमेंट साफ कीजिए और रोज सवेरे उठकर भगवान का नाम लेकर मन को और आत्मा को शुद्ध कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।